प्रभु, राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
कहते हैं सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति ना कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। ये भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। अपरमात्मा ये सभी ज्ञान सुना करते थे और भोली आत्मा परमात्मा की तरफ में उसी दिन से भटक रही है जब से भगवान से दूर हुई है, क्योंकि उसको यहां के बाद इसको पता चल गया कि तू गलत फंस गई। और परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, ऐसी कोई प्रबल शक्ति है, वो हमें सुख दे सकता है, हमारे दुखों का निवारण कर सकता है, लेकिन इस काल ने अज्ञान के माध्यम से अपने नकली संतों, ऋषियों और गुरु बना करके नकली भेज दिए। इन्होंने भगवान की महिमा ही, उनकी जो थ्योरी बदल दी, उनकी स्टेटमेंट, उसकी महिमा का गुणगान उल्टा कर दिया कि परमात्मा प्रारब्ध कर्म नहीं काट सकता, परमात्मा पाप कर्म नहीं काट सकता, क्योंकि पाप कर्म से ही तो दुख है। जैसे दवाई से रोग नष्ट नहीं हो सकता, तो क्या वो वैध हो सकता है? नहीं हो सकता। दवाई से रोग कटता है, इसलिए दवाई खाई जाती है। तो कहने का भाव यह है, परमात्मा की महिमा को सुनकर ये आत्मा शांत नहीं रहती, उसके पाने के लिए कहीं ना कहीं भटकती रहती है। और इन अनाड़ियों ने इतना सत्र गिरा दिया भक्ति का, एक समय काशी में, बनारस में इन स्वार्थी गुरुओं ने, हिंदू धर्म के गुरुओं ने एक ऐसी रोजी रोटी की ऐसी स्कीम बनाई। उन्होंने क्या किया कि भाई बनारस काशी में जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, और ये कहा कि मगहर जो मरता है, जो मगहर के मैं मुसलमान ज्यादा थे, और उन्होंने क्या बताया कि वहां भगवान शिवजी ने श्राप दे रखा उस पृथ्वी को कि वहां जो जिसकी मृत्यु होगी वो नरक गधा बनेगा। तो इस तरह की धारणा गुरुओं की मुख से सुनकर प्रत्येक व्यक्ति हिंदू समाज प्रभावित हो गया कि भी संत हैं, ऋषि हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, ये वेदों को पढ़ते हैं और ये सही करें। तो उन श्रद्धालुओं ने क्या सोचा कि भी हमारे पिताजी की मृत्यु, माताजी की मृत्यु तो होनी है, इसको अपने गुरुदेव के पास कुछ दिन अंत समय में, एक वर्ष या दो वर्ष वहां छोड़ देते हैं ताकि हमारे माता पिता की गति हो जाए, हमारे माता पिता स्वर्ग प्राप्ति कर सकें। इस कारण से वो अपने अपने क्षेत्र के ब्राह्मणों के पास बनारस में जाकर के प्रार्थना करने लगे कि हे गुरुदेव, मेरे माता पिताजी बहुत वृद्ध हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि यहां बनारस में उनको कोई व्यवस्था करके कोई मकान किराए पर लेकर यहां छोड़ दे और वो आपके मंगल वचन भी सुनते रहा करेंगे और यहां मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। तो उन ब्राह्मण लोगों ने सोचा, भाई क्यों ना हम इनको स्वयं ही अपने घर पर रख लिया, उनका जो महीने का पैसा होगा वो भी हमें मिलेगा और ये मौत हो जाएगी। तो ऐसी व्यवस्था सेठ लोग ही कर सकते हैं, निर्धन व्यक्ति तो बहुत ही कम ध्यान देता है इस तरफ क्योंकि उसके पास इतना जुगाड़ नहीं होता। फिर भी कुछ दिनों तक तो मामला ठीक चला। उन ब्राह्मणों ने, उन नकली गुरुओं ने कहा कि बच्चा तुम हमारे पास ही छोड़ दो, हम यहां रख लेंगे और जो देना हो दे देना हमारे को। तो कौन ना दे अपने माता पिता के लिए खर्चा, वो पैसे उनको देने लगे, उनकी मौज हो गई। कुछ दिनों में ऐसी ऐसी रिवाज पड़ी, ऐसी जो है ना एक सब पूरी पूरे हिंदू समाज में एक ऐसी धारणा बन गई, अपने अपने माता पिता को अपने अपने गुरुओं ब्राह्मणों के पास छोड़न लायेंगे। और बनारस काशी के अंदर उन गुरुओं के घर में जगह कौन रही। उन नकली कसाइयों ने केस हकीम बनाई, सब ने मीटिंग करी कि यू तो भाई बुढ़ापा तो बड़ी बड़ी टेढ़ा काम होता है, बीमार हो जाए, कदे खांसी होगी, कदे नमूनिया हो गया, उड़े थूके वही टट्टी पेशाब करे। जब तो उन लालचिया ने पैसे के लालच में वह बला मोल ले ली, फिर उन्हें सोची तो बहुत बात बिगड़ गई। अब बुढ़ा आदमी तो घर में बड़ी मुश्किल से उसकी सेवा हो पाती है और उन्हें नरे बुढ़े इकट्ठे कर लिए लालच में। तो उन्होंने स्कीम बनाई कि एक काम करें, श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, ब्लाइंड फेथ का, अंधविश्वास का फायदा उठाया, क्योंकि भगवान की प्राप्ति में अंधविश्वास चलता है। अंधविश्वास माने ब्लाइंड फेथ, अटूट विश्वास अपने गुरुदेव के, गुरुदेव के वचन और क्रिया पर, तभी भक्ति कर सकेंगे। आपके मन में शंका रहती रहेगी तो भक्ति नहीं कर सकोगे। आज भी वही है, अब आपको ज्ञान बताया जा रहा है, ज्ञान के बाद आप कति निरसंशय हो जाओगे, फिर आपने एक एक वचन पर इस दास के पर विश्वास, ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, तब आप आगे बढ़ पाओगे। श्रद्धा ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने इस नियम का नाजायज फायदा उठाया, मिसयूज किया। उन्होंने स्कीम बना ली सारे ब्राह्मणों ने, अब ब्राह्मण तो नहीं कह सकते वो उन गुरुओं को, क्योंकि ब्राह्मण इसे काम नहीं कर सकता, वो तो लालची लोग थे, डफरमैन जिनको कह सकते, नालायक। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि एक गंगा के किनारे एक ऐसा मकान, एक ऐसा वो बनाया गुफा सी, और उसमें जम गंगा के बिल्कुल जल के साथ ही, साथ वाली पैड़ी बिल्कुल गंगा जल चल रहा है, उसमें एक गुफा बनाई और उस गुफा में एक करौत लगा दिया, जो लकड़ी काटन का हाथ से आपने देखा होगा, वो 8-9-10 फुट लंबा और लंबे लंबे उसके दांत रेशे हुए आकर, फिर एक दिन इधर बैठ जाए, एक दिन उधर बैठ गए और लकड़ी काटते हैं, पूरे मोटे किक करके पेड़ को भी काट डालते हैं उससे, वो करौत कहलाता है लोहे का। वो क्या किया कि ऐसे आरस टाइप बना दिया वो मकान ऐसे, और उसमें ऊपर उस क्रोत को छुपा दिया, उसके दोनों हैंडलों को लंबे रस्से बांध के अंदर अंडरग्राउंड पाइप गाल के ले गए और दूर कंट्रोलर बना दिए, ऐसे 100-100 फुट की दूरी पर जहाड़ बोझ डैम है। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, एक और भ्रमणा फैला दी भाई, जिनको जल्दी स्वर्ग जाना है, परमात्मा की तरफ से एक क्रोत आता है और वो क्रोत गर्दन काट देता है, गर्दन काट देने से वो सीधा स्वर्ग चला जाता है। अब वो बुढ़े बुजुर्ग भी बड़े दुखी हो लेते हैं बुढ़ापे में, और परमात्मा के लिए शीस तो बहुत सिंपल था, क्योंकि शरीर अंत आ गया, शरीर शीस तो जाना ही है, तो भगवान के लिए अगर शीस अब दे दिया जाए शीघ्र जाने के लिए, इस बुढ़ापे तो अच्छा था, मृत्यु आप मांगन लाग जाया कर, बुढ़ापे में इंसान जब गणा दुखी हो जाए रोग राग, तो सभी उनके माता पिता ने अपने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा हमने जाना तो है ही, और गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान की तरफ से एक ऐसा क्रौत आता है और वो गर्दन छेदन कर देता है और गति हो जाती है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा चार्ज और रख दिया, 5 रुपये या 10 रुपये प्रति मेंबर। अब माता पिता को वैसे तो बच्चे नहीं कहते, लेकिन माता पिता की मुक्ति के लिए तो जो कुछ कहे वो करने को तैयार हो गए। प्रति महीने 1 रुपये का 2 रुपये खर्च था, और वो 10 रुपये रख दिए उन्होंने, उन्हें सोची कि मेरा 2 साल में मरे पिताजी, 10 साल में मरे, इस तरह भी कुछ इकोनॉमिकली भी सोच कर ली उन्होंने, पता था उन गुरुओं को नकलियों को कि ऐसे काम से ही चलेगा, तो उन्होंने फिर वो स्कीम अपना ली। सभी श्रद्धालु कहने लगे ठीक है जी 10 रुपये, वो माता पिता भी कहने लगे बेटा करवा दो कल्याण हमारा। वो माता पिता की गति कराने के लिए, उनकी गर्दन उनका हत्या कराने के लिए 10-10 रुपये और देने लगे। वो क्या करते थे, वहां ले जाते उनको, कहते आंख बंद कर लो भाई, देखना नहीं, आंखें बंद कर लो, और फिर वो क्या करते, हे भगवान ये आपके बच्चे आपकी आत्मा आपके पास आ रही है, इनको स्वीकार करो, वो जोर तो आवाज मारते मोटे पे टाणे, तो उनके वो कंट्रोलर थे वहां से वो रस्से ढीले कर देते, वो करो तो एकदम ऊपर से आता गद दे उनकी गर्दन कड़च कर देता और फिर वापस चला जाता, भाई देख लो वो गया 1 मिनट में वापस, 2 सेकंड में वापस, ओहो, और उनको नो के नो गंगा में बहा देते सबको, ना लाकड़ी का खर्चा ना कुछ, और ऐसा सिस्टम बना दिया। परमात्मा कहा करते कि भाई सत भक्ति करने वाला, चाहे मगहर मरो चाहे बनारस मरो, वो अपने इष्ट धाम को जाएगा जिसकी वो पूजा करता है, और जो सच्ची, जो तुम ड्रामाबाजी कर रहे हो साधना ठीक करते नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति चाहे मगर मरे चाहे काशी, वो नरक में ही जाते हैं, वो गधे ही बनते हैं, उनका मोक्ष नहीं हो सकता। परमात्मा ने कहा कि हे मूर्खो, तुम इन भोली आत्माओं को बर्बाद मत करो। परमात्मा ने कहा कि मैं मगर में प्राण त्यागूंगा, डंडोरा पिटवा दिया, और भाई देखना मैं स्वर्ग जाऊंगा या स्वर्ग से भी आगे जाऊंगा, मैं स्वर्ग से भी आगे जाऊंगा, और उनको कह दिया कि अपने गुरुओं को कह दे पत्थरी पो, अपने सारे जंतर मंतर वो जन्म पत्रियां और वो सारे पत्थरी पोते वो सब लेकर आ जाए, अपने ला लेंगे अटकल में, किस मुहूर्त में कहां जाया करता और मैं कहां जा रहा हूं। परमात्मा जब परमात्मा लीला में शरीर में 120 वर्ष का शरीर दिखा रहे थे, 120 वर्ष की आयु में अपना पूरा तत्व ज्ञान समझा के अपने गवाह बनाकर कि मैं परमात्मा हूं, तब उन्होंने यहां से प्रस्थान करना चाहा, और जाते समय भी सब भ्रम निवारण करना चाहते थे कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, स्वयंभू हूं, परिभू हूं। तो वहां से चल पड़े, उनके साथ मुसलमान भी हिंदू भी, और बहुत सारे दर्शक वहां से का बनारस से चल पड़े, वहां से पैदल चले वो 3 दिन में, काशी से मगहर पहुंचे, काशी से मगहर लगभग 200 किलोमीटर दूर है, ये दास वहां जाके आया है देख कर स्थान को। तो वहां जब परमात्मा पहुंच गए, उधर से मगहर रियासत का राजा नवाब बिजली खां पठान था, बिजली खान पठान वहां का नवाब था वो मुसलमान था और परमात्मा का शिष्य हो गया था। एक बहुत जबरदस्त मालिक ने उनके ऊपर रहम किया था। अकाल गिर गया था, तराई तराई मच रही थी, किसी भी संत किसी भी मुल्ला काजी से कोई वर्षा नहीं हुई थी, परमात्मा कबीर जी ने वहां वर्षा करवा दी थी, कह के करवा दी थी। उसके बाद बड़े प्रभावित हुए थे, परमात्मा की शरण में बिजली खां पठान और मगर के सभी मुसलमान आ गए थे। इधर से हिंदू भी बहुत ज्यादा परमात्मा के शिष्य थे। काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल भी प्रभु का शिष्य था। तो वीर देव सिंह बघेल अपनी सेना लेकर के साथ चल पड़ा कि गुरुजी मगर में शरीर छोड़ेंगे और हम वो मुसलमान वहां का नवाब जो बिजली खां पठान है वो भगवान हमारे गुरुदेव के जो शिष्य का शव का अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेगा, जमीन में गाड़ेगा, हम नहीं उसको ऐसे करने देंगे। अगर वो ठीक राजी खुशी नहीं देगा शरीर को तो झगड़ा लड़ाई युद्ध करके उसे छीन कर लाएंगे। इस उद्देश्य से वीर देव सिंह बघेल अपनी सेना लेकर के साथ चल पड़ा। वहां बिजली खां पठान को पता चला कि सतगुरु आ रहे हैं और उनके साथ बहुत से व्यक्ति भी आ रहे हैं, तो सबके खाने पीने और वहां रहने की व्यवस्था पानी की व्यवस्था करवाई। वहां पर एक आमी नदी बह रही थी लेकिन उस समय वो सूख गई थी। कहते हैं भगवान शिव ने वहां श्राप दे रखा था कि इस नदी में कभी पानी नहीं चलेगा, ऐसी कोई कहानी होगी थी। और साथ में ये भी श्राप दे रखा था कि यहाँ के मगर में कोई भी जल मीठा नहीं होगा। ये भी श्राप दे रखा था कि यहाँ जो मरेगा वो गधा होगा, भगवान शिव ने ऐसा बताया। उन्होंने बिजली खां पठान ने भी बताया और वहां के बनारस के ब्राह्मण भी कहा करते थे, यानी हिंदू समाज भी इस बात पर आरूढ़ था। परमात्मा वहां पहुंचे तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान ने कहा कि प्रभु आपके लिए नहाने की व्यवस्था करवा दी गई है, बाहर से जल मंगाया है मीठा पानी। प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं तो भाई बहते पानी में स्नान करूंगा, आज मैंने शरीर छोड़ना है। तब बिजली खां पठान ने कहा कि हे परवरदिगार, ये साथ में ही एक आमी नदी बह रही थी पहले, ये नदी तो दरिया का है लेकिन इसमें जल नहीं है प्रभु, ये सूखी पड़ी है और यहां आसपास कोई भी और दरिया नहीं है। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि चलो मैं देखता हूं कहां है वो दरिया, दिखाओ मुझे। वह दरिया के उस खाली दरिया पर खड़े हो गए, उस आमी नदी पर, और प्रभु ने ऐसे संकेत कर दिया जैसे ट्रैफिक का सिपाही कर देता ट्रैफिक को चलने का संकेत, तो पूरी ट्रैफिक बड़ी जोर से चल पड़ती है। ऐसे परमात्मा ने यूं किया हाथ से संकेत, एकदम आमी नदी बहुत कुछ दूरी पर ऐसा जैसे बम फटा कर इतनी आवाज हुई और वहां से अपने आप दरिया भर करके पानी निकल करके पानी जमीन से बाहर और दरिया भर के चल पड़ा, बहुत सुंदर निर्मल जल। बोलो सतगुरुदेव। वो आमी नदी आज भी विद्यमान है, ये दास अपने सैकड़ों सेवकों के साथ 3 बार देख कर आया, अभी उसमें जल चल रहा है और यही वहां के मगर के लोगों ने बताई, सच बताया। तो सभी ने जय जयकार करी, परमात्मा की स्नान किया, सभी ने जल पिया। तो परमात्मा ने कहा कि भी एक चद्दर नीचे बिछाओ, एक मैं ऊपर ओढूंगा और मेरा शरीर इसी चद्दर में पावेगा नहीं। लेकिन उनका कांत चाहे तो हमारे हम जो है ना परमात्मा के संग रह कर भी उन्हीं में उनको अपने जैसा ही मानते रहते हैं। जब परमात्मा चद्दर बिछा दी गई तो नीचे चद्दर के ऊपर थोड़े फूल डाल दिए, सुगंधित फूल, एक एक दो दो इंच हमारे गुरुजी लेटेंगे। तो परमात्मा ने कहा भाई, इधर से बिजली खां पठान को पता चला कि वीर देव सिंह बघेल सव लेने आया है, उन्होंने अपने मुसलमानों को भाइयों को इकट्ठा किया, सेना को तैयार कर लिया कि हम सब नहीं देंगे, हम परमात्मा के अपने गुरुदेव के सब को अपने मुसलमान रीति से दफनाएंगे, मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो दोनों तरफ सेना खड़ी है हथियार की पूर्ण तैयारी से युद्ध के लिए। परमात्मा बोला रहे वीर सिंह, इधर वीर देव सिंह बघेल खड़ा, इधर बिजली खां पठान। उनसे कहा भाई ये सेना किस लिए लाए हो तुम? अब वो दोनों के दोनों नीति गर्दन करके खड़े हो गए, नहीं बोल पाए। जो दूसरे मुंह ठंड से व्यक्ति थे वह कहने लगे गुरुदेव हम मुसलमान हैं, हम आप हमारे पीर हो, हम आपके सबको अपनी रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे, इन काफिरों को नहीं देंगे। उधर से मुसलमान हिंदू कहने लगे हम आपके सबको गुरुदेव ये मुसलमानों की रीति से अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे, हम मर मिटेंगे। परमात्मा बोले रहे 120 वर्ष तक मैंने यह कहानी सुनाई, तुम आज भी मुसलमान और हिंदू अलग अलग समझते हो, तुम नाला को तुमने के ज्ञान सुना मेरा? फिर तब परमात्मा ने कहा कि ध्यान से सुन लेना, अगर तुमने युद्ध किया तो मेरे से बुरा नहीं होगा, तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। अब उनको पता था शक्तिशाली है परमात्मा के शब्द में वचन में शक्ति है, लेकिन फिर भी वो मूड ऊपर से तो कहने लगे जो आपकी आज्ञा, पर अंदर से न्यू था भगवान एक बार शरीर छोड़ा फिर देखना क्या करते। मालिक को पता था ये लड़ मरेंगे, नष्ट हो जाएंगे, ग्रह युद्ध हो जाएगा, इतना महाभारत से भी जबरदस्त युद्ध हो जाना था ये, यदि परमात्मा अपनी शक्ति की समर्थता का समर्थता की को नहीं दिखाते। जो उसी समय प्रभु ने कहा कि एक चादर नीचे बिछाई एक ऊपर और लेट गए। कुछ देर के बाद ऊपर आकाशवाणी हुई कि देखो मैं जा रहा हूं सतलोक को, ए पंडितों निकाल लो थारे उस पत्रे ने, देखो कहां जा रहा हूं। जब ऊपर देखा सभी ने परमात्मा तेजो में शरीर युक्त और सतलोक को जा रहे हैं, ऐसे सह शरीर खड़े के खड़े पूरा मानव शरीर आकाश में जा रहा है। तो उधर से फिर चादर उठा के देखा, चादर के नीचे जितना शव था उतने सुगंधित फूल बन गए, परमात्मा नहीं थे। बोलो सतगुरुदेव। अब उस लीला को देखकर हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे को सीने से लगाकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो नीच थे, मंदबुद्धि प्राणी थे, हम भगवान को पहचान नहीं सके, ये तो अल्लाह थे, ये खुद परमात्मा आए थे। कहां तो वहां कत्लेआम हो जाना था और कहां एक प्रेम की दरिया बहेगी, हिंदू और मुसलमान आपस में बड़े प्यार से एक दूसरे से सीने से लगा रहे हैं। और फिर उन्होंने सहमति से कहा कि आधे फूल आप ले लो आधे हम ले लेते हैं, एक चादर तुम ले लो एक हम ले लेते हैं, ऐसा ही हुआ। पुण्यात्माओं महाभारत के युद्ध को श्री कृष्ण नहीं टाल सका और इस महाभारत से भी जबरदस्त भयंकर युद्ध को परमात्मा ने सेकंडों में टाल दिया। मासा घटे न तल बध है वेदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मारे मेख। अब परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। चले कबीर मगर के ताही तावा फूलन सेज बिछाई, दोनों दीन अधिक पर बाहू दोषी दुश्मन और सब साहू, ता बिजली खान चले पठाना वीर सिंह बघेल पद परवाना, काम काशी उमटी चली मगर को कोई न पावे तास डगर को। काशी भी उमड़ का चल पड़ी काशी के लोग। बैरागी सन्यासी योगी चले मगर को शब्द भी योगी, तीन रोज में पहुंचे जाई तावा सुमरण राम खुदाई, दोहु दीन है बाहा जोड़ी शस्त्र बांध लिए भर गोली, दोनों ने कहते बांच डाली वो लिए लड़ने को तैयार और शस्त्र तैयार कर लिए गोली भर ली। वे गाड़े वो जारन कहीं दोनों दीन अधिक से फही, तहां कबीर एक कही एक भाषा शस्त्र करे सो तही तलाका, शस्त्र करे सो हमारा द्रोही जाकी पैज पिछोड़ी होई, जो लड़ेगा वो मेरा शत्रु होगा, मेरा विरोधी होगा, उसकी उसका विनाश हो जाएगा। सुन बिजली खा बात हमारी, हम हैं शब्द रूप निराकारी, हम हैं शब्द रूप निराकारी निर्विकारी। सुन बिजली खान बात हमारी, हम हैं शब्द रूप निर्विकारी। वीर सिंह बघेला बिनती करे, हे सतगुरु तुम किस विदमर हो। वीर सिंह बघेला प्रार्थना करते हैं, सतगुरु आप कैसे प्राण त्यागोगे, क्या कैसे होगा आपका अंत। तावा चादर फूल बिछाए, सिज्जा छाड़ पदी समाए, दो चादर दो दीन उठावे हैं, ताके मध्य कबीर न पावे। परमात्मा ने कहा कि दो चादर तुम एक एक ले लेना, आदि आदि एक चादर वो ले लेना, एक वो ले लेना, उसके बीच कबीर नहीं पाओगा। दो चादर दो दीन उठावे ताके मध्य कबीर न पावे, तावा अवगत फूल सुवासी, मगहर घोरा चौरा काशी। कि वहां मगहर में तो दोनों ने बिल्कुल एक बीच में द्वार द्वार थी, पहले तो ये दास पहली बार देख रहा, एक द्वार थी दोनों यादगारों के बीच में, इधर मुसलमानों ने बना रखी है और इधर हिंदुओं ने। ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा ये चित्र हम लाए थे वहां परमात्मा की बनी हुई दोनों यादगारों का, इसको देखकर भी वो याद न्योकी नु ताजा हो जाती है। ये सामने एक गेट है, ये अब ये जो सामने आपको ये वस्त्र सूखे नजर आ रहे हैं, सूख वस्त्र छुका रखे थे हमने ना दो के, हमारे साथ भक्त गए थे उन्होंने। अब देखिएगा ये यादगार है मुसलमानों द्वारा बनाई गई, ये है मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार। सशरीर सतलोक प्रस्थान के पश्चात परमेश्वर कबीर जी की याद में मगहर में मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार, ये नीचे, और ये हिंदुओं द्वारा निर्मित यादगार, ये दोनों देखो ना पूरा, ये देखो, ये एक और दोनों देखो, ये भी। अब ये तो है हिंदुओं द्वारा निर्मित, ये है मुसलमानों द्वारा निर्मित। इसमें यहां एक दीवार है, ये वाली दीवार थी पहले, ये देखना, अब इसमें कपड़े से सूख रहे हैं ये केवल पाइप लगा दी ग्रिल बीच में, या द्वार निकाल दी गई। यहां एक गेट है, देखिए दिख, इन आपस में आने और जाने का गेट है, ये रास्ता इधर आने का, ये यहां तक आ रहा है, ये पूरा खाली मैदान है चारों तरफ से, और यहां इधर गेट है एक जो हिंदुओं वाले प्रवेश करने का, इससे आगे चल के, ये नहीं आ सका इसमें गेट, आगे चल के है। तो ये दोनों इतने स्थान में ही, ये ज्यादा से ज्यादा आपस में दूरी इनकी 40 फुट 50 फुट की है, बीच में कॉमन द्वार थी वो भी निकाल दी गई है। या सभी हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से रहते हैं, इनका आपस में कभी धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं हुआ, ये ऐसा बताते थे, हमने पूछा इनसे तो वहां के हिंदू और मुसलमान लगभग बराबर की संख्या में रहते हैं। अब आपको ये तो परमात्मा ने बताया है, फिर उन्होंने बताया है कि इसके बाद क्या होता है, ये जीव जब यहां से चलता है तो ये काल का जाल बहुत भयंकर है, आगे चल के ये काल इस दुर्गा को आदेश देता है कि कोई भी जीव यहां से निकल ना जावे, कोई भी प्राणी यहां से निकल ना जावे, और उसको किसी ना किसी तरीके से फांसना है, फंसाना है। तो जब परमात्मा यहां से सह शरीर जा रहे थे तो रास्ते में ये दुर्गा मिली, इसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, बहुत खूबसूरत, और परमात्मा से कहा कि आप मेरे साथ शादी करो, मैं आपकी पत्नी रूप में रहूंगी, आप मेरे पति रूप में रहोगे। तब परमात्मा ने कहा कि तुझे धोखा लग गया है, तुझे धोखा लगा है दुर्गा, तू मेरे, मैं तेरे काबू में नहीं आ सकता। तो क्या कहते हैं कि ना मगर पियाना सतगुरु की ना मगर, ना सतगुरु की ना मगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, की ना मगर पियाना सतगुरु की ना मगर, सतगुरु की ना मगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को चाल छड़े चले छाड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो, साहसिक अंदर कदम लेत है, साहसिक अंदर कदम लेत है पात सही सुल्ताना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चार वेद के वक्ता संग हैं खोजी भड़े बयाना हो, चार वेद के वक्ता संग हैं खोजी भड़े बयाना हो, सालग राम सुरत से सेवें, सालग राम सुरत से सेवें वो ज्ञान समुंदर दाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। की ना मगर पियाना सतगुरु की ना मगर, पियाना सतगुरु की ना मगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके। सट दर्शन जाके संग चले वो गावत बाणी ना ना हो, अपना सट दर्शन संग चले संग जाके चले गावत बाणी ना ना हो, अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट संभाले वो बच्चे पोथी पाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु वो देख सकल जिहाना हो, चादर फूल बिछाए सतगुरु देख सकल जिहाना हो, चार वेद से चार दाग से रहत जुलैदी, चार दाग से रहित जुलैदी अवगत अलख अमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई वीर सिंह बघेला करे बीनती वो बिजली खान पठाना हो, वीर सिंह बघेला करे बीनती वो बिजली खान पठाना हो, दो चादर बख्शीस करी है, दो चादर बख्शीस करी है दीना ये परवाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। की ना मगर पियाना सतगुरु की ना मगर पियाना, सतगुरु की ना मगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई नूर 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 निर्गुण पद मेला वो देख सब नूर नूर निर्गुण पद मेला, देख बहे हैराना हो। पदलो लीन हुए अविनाशी, पदलो लीन हुए अविनाशी, वहां पाए पिंड न पराना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, भाई शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, शब्द शब्द समाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में, दास गरीब कबीर अरस में, वो फर्क ध्वजा निशाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। अब परमात्मा जब यहां से वहां चादर फूल बिछाए छोड़ दिए, स्वयं सह शरीर जा रहे हैं, आ गई दुर्गा मिलती। अब क्या कहती है, देख्या मगर जहूरा सतगुरु, देख्या मगर जहूरा सतगुरु, देख्या मगर जहूरा हो। कसी में कीर्ति कर चले, वो झलमल देही नूरा हो। कसी में कीर्ति कर चले, वो झलमल देही नूरा हो। माया आदि अरस से उतरी, वो बनी अप्सरा हूरा हो। माया आदि अरस से उतरी, बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तुम हो दुल्हा पूरा हो। देख्या मकासी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मेरा देखो बदन जहूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मेरा देखो बदन जहूरा हो। अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, भोगे हमको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, कह कबीर सुनोरी माया, ये कुटिल नजर तुम गूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, ये कुटिल नजर तुम गूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, वो होगे धूर मधूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूं जग से दूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूं जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, रखूं पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। देख्या मगर जहूरा सतगुरु, देख्या मगर जहूरा सतगुरु, देख्या मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे सो बह जावे, जो तुझे खावे सो बह जावे, वो तास अकल के कूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। भाई श्वेत मुकुट जा श्वेत छत्र है, जो श्वेत मुकुट जा श्वेत छत्र है, वो बाजे अनहद तूरा हो। दास श्वेत मुकुट जा श्वेत छत्र है, बाजे अनहद तूरा हो। दास गरीब कहे सुन माया, कहे कबीर सुनो सुनो, कहे कबीर सुनो हो माया, हमसे रहियो दूरा हो, काशी में कीर्ति कर चले, जिल मिल देही नूरा हो, काशी में कीर्ति कर चले, जिल मिल देही नूरा हो। परमात्मा हमें यही सतर्क करते हैं कि तुम सतगुरु की आड़ मत छोड़ना। अंत समय में भी आप परमात्मा से दूर होगे और आप यहां से जाओगे, आपको स्वर्ग भेजा जाएगा, क्योंकि आप प्रथम मंत्र का जो जाप कर रहे हो वो बहुत जबरदस्त बहुत कीमती है। उसके बाद सतनाम का जो जाप आपको प्राप्त है इसकी भी बहुत महिमा है। वहां जाकर के आपको ऐसा लालच दिया जाएगा कि आप इतने कच्चे हो, क्योंकि सतगुरु की आड़ बिना हम इनसे बच नहीं सकते, चाहे कितनी बात बना ले कोई। तो ऊपर जाके काल ने अपनी सब छोड़ रखी है, कहते हैं 12 करोड़ धर्मराज की, धर्मराज जो है काल प्रेरणा से, इसकी 12 करोड़ अप्सराएं हैं, ये वहां घूमती रहती है। इसके विपरीत ऐसे ही देव पुरुष बनाए हुए हैं जो स्त्री की आत्मा को बाधक बनते हैं। तो हम यहां से परमात्मा की आड़ हमसे छूटगी, पार होने की बात मत पाठ मत देखना। अंतिम श्वास तक हमने सदगुरु की छाया में रहना पड़ेगा, वही हमें यहां से लेकर निकाल सकता है। हम बेशक कितने ही साधक भी बन जाएं, लेकिन हमारी अंतःकरण में वीकनेस बहुत रहेगी। वो ऑप्शन वो परमात्मा ग्रेस देगा, हमारे को ग्रेस मार्ग देकर हमें निकालेगा, वो साथ लेकर जाएगा। वो आपको त्रिकुटी में मिलेगा, वहां से फिर प्रभु इस दास के रूप में होगा। आपने फिर अपने ही, क्योंकि इस ज्ञान के आधार से वहां किसी भी लालच की तरफ नहीं देखना, केवल अपने सतगुरु के साथ ही रहना, सतलोक ऐसे जाया जाएगा। बोलो सतगुरु देव सत साहिब।